समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो करिश्मा, हेलो एंड गुड डे टू एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय, विद मी टुडे इज माय को-होस्ट करिश्मा राय, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेट नाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Government rejects opposition snooping claims over Sanchar Sathi app in Parliament today.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav says fake news is a threat to democracy. Government actively monitoring complaints against media institutions.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में तेज बारिश के कारण भीषण बाढ़ की चेतावनी।
And in cricket, South Africa win toss and elect to bowl against India in the second ODI at Raipur. And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day of Persons with Disabilities, and we will also talk about Sanchar Sathi app as well. So to start off with the first topic, Karishma, every year December 3rd is observed as International Day of Persons with Disabilities. The observance of the day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights and well-being of persons with disabilities.
कभी-कभी शब्दों कम पड़ जाते हैं और भावनाएं खुद अपना रास्ता चुन लेती हैं। श्रोताओं, ऐसे ही एहसासों को शब्द देते हुए प्रस्तुत है आशीष बैरागी की कुछ पंक्तियां। मैं हर बात बोल लेता हूं इशारों से अपने, जैसे दरिया बात करती है किनारों से अपने। तुम चीख कर भी खुदा तक पहुंच नहीं पाते, मेरा मौन बात करता है सितारों से अपने।
जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। बादल हो या
Yes, and if I ask our listeners, Karishma, to imagine a person who's trying to build a better life, but every step forward feels like walking through mud. For many people with disabilities and their families, that's what daily life can be like. And across countries and communities, they often face the exact same set of challenges. Higher chances of living in poverty, sometimes because everyday essentials cost more when disability-related needs are added in. Workplace barriers like being offered lower wages or been pushed into informal jobs with no stability.
बिल्कुल, रेडी पटरी वालों, गिग वर्कर्स या फिर घर से काम करने वालों के बारे में सोचिए जिनके पास सामाजिक सुरक्षा तक समान पहुंच नहीं होती है, और शायद सबसे दर्दनाक देखभाल और सहायता प्रणालियां जो उनकी गरिमा और स्वतंत्रता को नजरअंदाज करती हैं, जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अपने जीवन में उनकी कोई बात नहीं सुनती।
यस, एंड करिश्मा, दिस इश्यूज डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। Poverty, employment and social inclusion are all tied together like three legs of a stool. If one leg is weak, the whole thing becomes unstable. And that's why creating a world where persons with disabilities are fully included isn't just the right thing to do, it is essential for social progress.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि किसी समाज को सही मायनों में तभी विकसित किया जा सकता है जब दिव्यांगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने यह बात नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान कही। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए।
Yes, and addressing the event, President Murmu lauded them and said that the incredible achievements are a source of inspiration for everyone.
इसी समाज को सही अर्थों में विकसित माना जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो। दिव्यांगजन संवेदनशीलता और करुणा के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है।
राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के उत्थान में विशेष रूप से खेलों के माध्यम से सरकार की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2012 के पैरालंपिक खेलों में भारत ने केवल एक पदक जीता था जबकि 2024 के पैरालंपिक खेलों में देश ने 29 पदक जीते जो भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा स्थापित प्रगति के मानक को दर्शाता है।
समाज और सरकार की सजगता और सक्रियता के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक प्राप्त किए थे। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं और प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन करके सरकार द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी की यह कविता दिव्यांगजनों के आत्मबल को दर्शाती है। इसी क्रम में केंद्र सरकार हर वर्ष दिव्यांगजन के लिए यह राष्ट्रीय पुरस्कार विशेष रूप से समक्ष व्यक्तियों के संकल्प, समर्पण और साहस और उपलब्धियों का सम्मान करता है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का पुरस्कार जीतने वाली नागपुर की पहली 22 वर्षीय व्हीलचेयर मॉडल अबिली विजय जरित ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपना अनुभव साझा किए।
नाम अबोली जरित है, मैं 22 इयर्स की हूँ, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। नागपुर की फर्स्ट व्हीलचेयर मॉडल, हैप्पीनेस एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर एंड इन्फ्लुएंसर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट। मेरी जर्नी 8 इयर्स से शुरू है और 8 इयर्स के करियर में मैंने इतना सब कुछ हासिल किया है। मुझे क्रोनिक किडनी डिसीज है जिसमें मेरी दोनों किडनी डैमेज है और रेगुलर साइज से छोटी है और मुझे ब्लैडर नहीं है। मैं मोटिवेट करती हूँ पेशेंट्स को एंड एज अ रोल मॉडल आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, नेशनल अवार्ड, और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है एंड मेरी फैमिली को भी।
वहीं इंदौर की पैरा एथलीट पूजा गर्ग ने भी अपने संघर्ष और सफलता की कहानी आकाशवाणी समाचार से साझा की।
मेरा नाम पूजा गर्ग है, मैं कयाकिंग कैनो के इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने इंडिया को 3 बार इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करा है, उज्बेकिस्तान, जापान और थाईलैंड में, और मैं मेडलिस्ट भी हूँ। इस साल एशियन चैंपियनशिप में मैंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं इंडिया टीम की रेनाउंड शूटर भी रही हूँ। इंजुरी से पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी लेकिन शायद लाइफ को कुछ और मंजूर था और मैं आज इंडिया टीम की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ।
यह राष्ट्रीय पुरस्कार न केवल दिव्यांगजनों की क्षमताओं को उजागर करती है बल्कि समाज में उनकी मुख्य धारा में भागीदारी को भी प्रोत्साहन करती है। आज के समारोह में केंद्र सरकार ने 32 दिव्यांगजनों को उनके उपलब्धियां, दृढ़ संकल्प और योगदान के लिए सम्मान किया। परिक्रमा के लिए अमन और अंकित के साथ आदित्य प्रताप सिंह।
Yes, and that was a report from a correspondent Aditya. And moving on, think of a city bus with a broken wheelchair ramp, Karishma. This looks like a small detail, but it can keep someone from getting to work, leading to lost income, which then affects everything from healthcare to education for the family. And that's why I say inclusion isn't abstract. It shows up in these everyday moments. And let's talk about the 2025 theme of this year, Fostering Disability Inclusive Societies for Advancing Social Progress. For the International Day of Persons with Disabilities invites everyone, governments, communities and individuals to imagine societies where everyone can contribute and thrive.
बिल्कुल। और अभिषेक, विश्व के नेता पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि सभी लोगों को शामिल किए बिना एक निष्पक्ष और टिकाऊ दुनिया का निर्माण संभव नहीं है और विकलांगता समावेशन इस दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने एक सरल विचार के साथ अपनी विकलांगता समावेशन रणनीति शुरू की और अगर हम दुनिया को समावेशी बनाना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र को भी समावेशीय होना होगा।
Yes, Karishma, and since then the UN has been working across all its offices globally and locally to make sure disability rights and perspectives are built into everything it does, from peacekeeping to humanitarian aid to hiring practices. The message is clear: inclusion can't be an add-on, it must be part of the system.
हमारा समाज कितना भी अद्भुत और समावेशी होगा अगर हर नीति, कार्यस्थल और स्कूल और सार्वजनिक स्थान शुरू से ही सभी को ध्यान में रखकर बनाया जाए। हमारे शहर ज्यादा स्वागत योग्य लगेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक दिव्यांग समावेशी समाज का निर्माण केवल बाधाओं को दूर करने के बारे में नहीं है बल्कि ये संभावनाओं को उजागर करने के बारे में भी है।
Yes, when every person is able to learn, work, participate and lead, communities become richer in ideas, stronger in resilience and more human in spirit. Inclusion doesn't only change the lives of persons with disabilities, it transforms all of us. It reminds us that progress isn't measured by how far the fastest can run, but how many of us can move forward together.
और श्रोताओं, जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, सवाल अब ये नहीं रह गया कि क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी को अपनापन महसूस हो। सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और जितना ज्यादा हम इस दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध होंगे उतनी ही ज्यादा जल्दी हम ये कर पाएंगे, क्योंकि एक समावेशी दुनिया न सिर्फ संभव है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है।
And today is International Day of Persons with Disabilities, and as a part of our podcast series, Karishma, Person Behind the Story, we will broadcast a conversation with Chonzin Angmo, the first visually impaired woman in the world to climb Mount Everest.
लोगों का यही रिएक्शन रहता है, देखने वाले लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं, आपको तो दिखता भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आज जब भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे कंट्री के नाम आएगा इंडिया। फिजिकली के साथ मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। पैरों ने काम करना बंद कर दिया, दाई ने बोला रुकना नहीं है, तुम्हारे पीछे देखो 50-100 लोग लाइन में खड़े हैं। ये मैंने अपनी डिसेबिलिटी कम्युनिटी उन सबके बिहाफ पे सबमिट किया है।
Yes, and to listen to the entire podcast, tune into Akashvani FM Gold at 5:30 in the evening today. Yes, and in view of the increasing acceptance of Sanchar Sathi app, the government has decided not to make the pre-installation of this app mandatory for mobile manufacturers. The government also clarified that citizens can remove the app whenever they want and there's no other function other than protecting the users in the app. The Minister of Communications in a statement stated that so far 1.4 crore users have downloaded this app and 2,000 fraud incidents have been reported every day. The Ministry further informed that just in the last one day, 6 lakh citizens have registered for downloading the app, which is a 10 times increase in its uptake. And the Minister also said that the app is secure and purely meant to help citizens from bad actors in the cyber world.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
केरला कैपिटल तिरुवनंतपुरम इज इन द स्पिरिट ऑफ अ फुल फ्लेज्ड नेवी ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन टू बी हेल्ड दिस इवनिंग एंड द डेमोन्स्ट्रेशन इज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट शनगुमुगम बीच नियर तिरुवनंतपुरम एज पार्ट ऑफ द डिसीजन टू कंडक्ट नेवी डे रिलेटेड इवेंट्स एट लोकेशंस आउटसाइड मेजर नेवल कमांड्स एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल बी द चीफ गेस्ट एट शनगुमुगम। Naval Chief Admiral Dinesh K. Tripathi will host the event and the President is expected to reach the demonstration venue by 5:15 p.m. and the program will begin after ceremonial salutes and the President will leave the venue by 7 p.m. We have more from a Thiruvananthapuram correspondent, Smithy M. Paluruthi.
Shankhumukham Beach near Thiruvananthapuram is fully prepared for the high-profile event where the Indian Navy will showcase its strength, precision, and combat readiness. The President will land at Thiruvananthapuram International Airport and proceed to the venue to witness the spectacular demonstration. This year's operational demo will feature an impressive lineup of 19 major warships and 32 aircrafts, including the fighter jets and surveillance helicopters. The event will open with a ceremonial MH-60R helicopter salute to the President. The pride of the nation, INS Vikrant, will be the biggest attraction. Navy personnel will demonstrate swift response procedures by slithering down from helicopters into rescue boats and moving towards a mock shipwreck to carry out evacuation drills. The event will conclude with a majestic naval parade, this reflecting the discipline, precision, and power of the Indian Navy. Midhi M. Paluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
वहीं मणिपुर के इम्फाल में 22 से 29 नवंबर तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस टीम में छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के अनेक युवा खिलाड़ी भी शामिल हुए थे और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
इम्फाल में हुए अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की टीम ने इतिहास दर्ज किया है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ की टीम ने अमेरिका, कोलंबिया, इंडियन पोलो एसोसिएशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर यह गौरव अर्जित किया है। खेल से शक्ति पहल के तहत एक मैनेजमेंट कंपनी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के प्रतिभाशाली छात्रों को घुड़सवारी और पोलो का प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण भारतीय सेना के अनुभवी पोलो खिलाड़ियों ने दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की खेल से शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम से राज्य के आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
The 38th National Road Cycling Championship 2025 has begun in Sambalpur, bringing together top cyclists from across the country for 5 days of high-speed competitive racing. We have more from a Sambalpur correspondent.
Sambalpur in Odisha yesterday witnessed the grand opening of the 30th National Road Cycling Championship 2025. The event, which will conclude on the 6th of December, features more than 1,000 cyclists representing all 28 states and 8 Union Territory of India. The competition is being held in three categories, senior, junior and sub-junior, on a challenging route from Naksapali to the flyover area. The track has been specially chosen to the test riders' endurance and technical skill. The championship, organized by the Cycling Federation of India and locally coordinated by the Odisha Cycling Association with strong financial support from the government of Odisha. A participant from Assam, Gyanam, expressed his excitement about competing at the national level.
मैं आसाम से हूँ। मेरा अंडर 16 खेल रहा था इस बार आईटीटी हो गया। मैं उड़ीसा में ये सेकेंड टाइम मैं नेशनल लास्ट टाइम मैं पुरी में हुआ था। ये तो 2 तारीख से 6 तारीख तो होगा। ये तो होल इंडिया का है, सब कैटेगरी का अलग अलग है।
With effective traffic and crowd management support from the local police, Sambalpur is all set for 5 days of thrilling and action-packed cycling events. For Parikrama, this is Alok Chandra Varik, Akashvani, Sambalpur.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 43 ओवर में 5 विकेट पर 297 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
And on to some business news. Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended marginally lower today, marking a fourth consecutive session of losses. The Sensex dipped 31 points to close at 85,107. The Nifty also fell 46 points to settle at 25,986. In the forex market, the rupee today depreciated by 32 paise to trade at 90 rupees and 19 paise against the US dollar. a short while ago.
और अब हम याद कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। वे श्री अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे।
खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में कोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे इसलिए ये विचार बदल दिया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला।
पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के बैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। खुदीराम को हथकड़ी बांधकर जब मुजफ्फरपुर थाने में लाया गया तो समूचा शहर इस किशोर को देखने के लिए उमड़ गया।
खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
आज जयंती है भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। प्यार से राजन बाबू कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित गणतंत्र के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। जाति और अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास नेशनल कॉलेज शुरू किया।
जुलाई 1946 में जब देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए।
26 जनवरी 1950 को वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 12 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रीय नेता को हमारा नमन।
आज हम रमा देवी चौधरी को भी याद कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के एक समाज सुधारक थी। वर्ष 1921 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था जब वो गांधी जी और कस्तूरबा जी से मिली। वे अपने परिवार के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गई। 8 नवंबर 1930 को बालेश्वर और जगत सिंहपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया।
रमा देवी ने पुनर्निर्माण के लिए रामचंद्रपुर में सेवाघर की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद रमा देवी ने खुद को पूरी तरह से आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया।
22 जुलाई 1985 को रमा देवी ने अंतिम सांस ली।
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद वह महान हस्ती थे जिन्हें दुनिया आज भी अद्भुत कौशल, तेजी और उनके अनोखे नियंत्रण के लिए याद करती है। ध्यानचंद ने अपने खेल से भारत को विश्व हॉकी की चोटी पर पहुंचाया। उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक भी दिलाए।
Yes, and Dhyan Chand, known as the wizard or the magician of hockey for his superb ball control, Chand played internationally from 1926 to 1949, where he scored 570 goals in 185 matches, according to his autobiography, Goal, and over 1,000 goals in his entire domestic and international career. And Karishma, BBC called him hockey's equivalent to Muhammad Ali. The government of India awarded Chand India's third highest civilian honor, the Padma Bhushan, in 1956. And also his birthday, 29th August, is celebrated as National Sports Day in India every year. And India's highest sporting honor, Major Dhyanchand Khel Ratna Award, is also named after him. And moving on, Robert Louis Stevenson passed away on this day in 1994. He was a Scottish novelist, essayist, poet, and travel writer. He is best known for the novels Treasure Island, 1883, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886, and Kidnapped, 1893, and the poetry collection A Child's Garden of Verses, in 1885.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के सदाबहार अभिनेता, निर्माता और निर्देशक देवानंद को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। देवानंद, जिन्हें प्यार से लोग एवरग्रीन स्टार कहते थे, हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे चमकदार सितारों में से एक माने जाते हैं। उनका अंदाज और उनका आत्मविश्वास, इन सब ने उन्हें करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया।
फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
Yes, and Devanand is considered as one of the greatest and the most successful actors in the history of Indian cinema. Through a career that spanned over 6 decades, he worked in more than 100 films. Anand is a recipient of 4 Filmfare Awards, including 2 for Best Actor. And the Government of India honored him with the Padma Bhushan, India's third highest civilian honor, in 2001, and with the Dada Saab Phalke Award in 2002. Let's listen in to a dialogue from one of his movies.
Raju, ye kaise
mazaak hai? Mazaak hota to kya baat? न महल बनते न महल टूटते, न राहें मिलती न राहें बिछड़ती। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिसने लेने,
ये तमाशा करना जरूरी है।
जो खुद तमाशा बन गए वो तमाशा क्या करेंगे। आइए, आपको गाड़ी तक छोड़ दूं।
अच्छा, अब आप जाइए और कपड़े बदलिए, मैं आपकी राह देखती हूँ।
बहुत राह देखी, एक ऐसी राह पे जो तेरी है गुजर भी नहीं।
ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? देखो, शो का वक्त हो रहा है।
वक्त हो चुका, शो हो चुका, देख चुके हैं।
आज मालूम होता है साथ आने की नीयत नहीं।
नीयत तो ठीक थी, साथ निभा नहीं और बात है।
राजू, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गई, लेकिन मेरा दिल दुखाने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और पूछो, क्या सारा दोष मेरा है?
भगवान ना करे तुम्हारा कोई दिल दुखा है। ड्राइवर, मेम साहब को थिएटर ले जाओ।
इसके साथ ही आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास की एक चमकती हुई सितारा मिताली राज का जन्म हुआ था। मिताली राज को दुनिया की सबसे सफल महिला क्रिकेटरों में गिना जाता है। शांत स्वभाव, गहरी एकाग्रता और बेहतरीन तकनीक से उन्हें लेडी सचिन का खिताब भी दिया गया। हैदराबाद में जन्मी मिताली ने बहुत ही छोटी सी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्होंने भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
Gwen Dolin Elizabeth Brooks passed away on this day in 2000. She was an American poet, author and teacher. Her work often dealt with the personal celebrations and struggles of ordinary people in her community. And she won the Pulitzer Prize for Poetry on May 1st, 1950 for Annie Allen, making her the first African American to receive the Pulitzer Prize. And also Karishma, Mamta Chandrakar was born on this day in 1958. She is a Padma Shri awardee, folk singer of Chhattisgarh. She is referred to as the Nightingale of Chhattisgarh. Mamta Chandrakar has a post-graduation degree in singing from Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya. And Mamta Chandrakar has started singing from the age of 10 years and professionally took it as a folk singer in 1977 with Akashvani Kendra Raipur. She is a Padma Shri awardee in 2016 for her work, and she has bagged several other state-level awards. Let's listen in to one of her songs.
और आज ही के दिन भारत के महान चित्रकार नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। भारतीय आधुनिक कला को दिशा देने वाले नंदलाल बोस देश की सांस्कृतिक पहचान में एक महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। नंदलाल बोस को भारतीय कला पुनर्जागरण का प्रमुख स्तंभ भी माना जाता है। उन्होंने पारंपरिक भारतीय कला, लोक शैली और आधुनिक अभिव्यक्ति, इन सबका सुंदर संगम दिखाया है। कला क्षेत्र में उनके अद्भुत योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में शामिल पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
actress, and Konkana Sen Sharma was born on this day in 1979. She's an actress and filmmaker who works primarily in Bengali and Hindi films. She has received several awards, including 2 National Film Awards and 3 Filmfare Awards. And the daughter of filmmaker and actress Aparna Sen, she is primarily known for her work in independent films. In addition to working in mainstream films, let's listen in to a song from one of her movies.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ अनुमति दीजिए करिश्मा राय और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने के लिए।
नमस्कार।